कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी
Oh,
अथ तृतीयोऽध्यायः राजोवाच परस्य विष्णुरीशस्य मायिनामपि मोहिनीम् मायाम् वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः नानृप्तयेजु संयुष्मद्वचो हरिकथामृतम् संसारतापनिस्तप्तो मर्त्यस्तत्तापभेषजम् एकादश स्कंध श्रीमद्भागवत के तीसरे अध्याय का ये प्रथम और द्वितीय श्लोक आप लोगों के सामने उच्चारण किए गए। इसमें प्रवेश करें इसके पहले सिंहावलोकन न्यायेन हम लोग विचार कर लें कि आज ये प्रसंग चला तो कैसे चला। तो पिछले कुछ समय से हम लोग नव योगेश्वर संवाद के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों ने बड़े प्रेम से सुना और उसको उतने ही प्रेम से भुलाया, इसलिए उस भूले हुए को हम फिर स्मरण कर लें, इसलिए थोड़ा पिछला प्रसंग श्रवण कराते हैं। वो उसमें 7:54 बजे हैं और इसमें 8:02 हैं। कौन सी घड़ी प्रमाण है? वो प्रमाण है, तब ठीक है, 7:54 ठीक है। हमारी घड़ी थोड़ी आगे होनी चाहिए। तो प्रसंग इस तरह से है, भगवान बहुत दयालु है। अब हम चाहे कितना जोर लगा के कह दें भगवान बहुत दयालु हैं, जब तक आप स्वयं अनुभव नहीं करोगे तब तक हमारे पूरा जोर लगाने से कोई फायदा वायदा है नहीं। लेकिन तो भी हम अपना अनुभव बताएंगे कि भगवान से बढ़ के दयालु और कोई नहीं है। उनकी प्रत्येक क्रिया केवल और केवल पर्सनली हमारे लिए मंगलकर है, सबके लिए हम नहीं कह रहे हैं। हम इंडिविजुअल के लिए पर्सनली, हम इंडिविजुअल के लिए मंगलकारी है, ये उनकी सामर्थ्य है जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मध्य में एक छोटा सा धूली के कण जैसा ये पृथ्वी मंडल और उस पृथ्वी मंडल के एक कोने में भारतवर्ष, उसके भी एक कोने में नाम तो महाराष्ट्र कहां आएगा, और उस महाराष्ट्र में बृहन मुंबई, बड़ी मुंबई, मुंबई तो मोटी छेज, कोई ना कोई संदेह नहीं। उस बृहन मुंबई के एक कोने में ह्यूजीज रोड, बाबुलनाथ रोड का कॉर्नर, उसमें ये प्रेमपुरी आश्रम। अगर इस प्रेमपुरी आश्रम का नक्शा बनाया जाए तो उसमें गिरीश भाई की कितनी बड़ी जगह दिखाई पड़ेगी। लेकिन तो भी उस परमात्मा को गिरीश भाई का उतना ही ध्यान है जितना कार्ष्णी महाराज का ध्यान है उनको। तो इसलिए ये मत सोचना, कई लोग कहते हैं भगवान भी हमको भूल गए हैं। आप भगवान को भूल सकते हो या भूल जाते हो, हमारी बात को अगर विश्वास से स्वीकार करो, भगवान कभी किसी को एक क्षण के लिए भी नहीं बुलाते हैं। ये सच्ची बात, भगवान चाहे तो भी नहीं भुला सकते, उनका स्वभाव है। भगवान किसी को नहीं बुलाते। मधुसूदन माई डियर, हम क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जो भी कर रहे हैं उसकी सामर्थ्य से कर रहे हैं। सांस ले रहे हैं तो उनकी सामर्थ्य से ले रहे हैं। अरे हार्ट को बीट करने तो कोई प्रयास कर रहे हो क्या? कोई योगा, कोई प्राणायाम, कोई नाटक। हमारे मधुसूदन भाई बहुत बड़े योग के अनुभवी व्यक्ति, चुपचाप कोने में ऐसे बैठे रहते जैसे कुछ जानते ही नहीं है। जो सत्संग इन्होंने पिया है, जो गुरु की कृपा इनके ऊपर बरसी है, जो योग की साधना इन्होंने की है, वो आप लोग हमसे ज्यादा जानते होंगे, लेकिन हमको भी कहने में अच्छा लग रहा है इसलिए बता रहा हूं। हमको कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ रही हार्ट बीट होए। अगर भगवान भूल जाए एक आध बार और हार्ट बीट थोड़ी बंद हो जाए, अच्युतम केशवम राम नारायण, तो ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं, और ये बात हम जितनी बार मौका लगेगा हम फिर बताएंगे, जिससे किसी तरह हम लोगों के बुद्धि में ये आ जाए कि हम रमण बिहारी के हैं, रमण बिहारी हमारे हैं, चूंकि रमण बिहारी हमारे हैं इसलिए कभी हमको भूलते नहीं। और भूलते नहीं का मतलब यही नहीं कि हाय इस तरह नहीं, तुम्हारी प्रत्येक चेष्टा, तुम्हारे प्रत्येक चिंतन का ध्यान रखते हैं। सबका ध्यान रखते तो अपने बाप का भी रखेंगे। प्रायः करके दिया के तले अंधेरा होता है, अति सामीप्यात अवज्ञा, अति सामी जो लोग, इसीलिए हमारे यहां सिखाया जाता है योगी, राजा, अग्नि और जल, इनसे सावधान होकर रहना चाहिए। जो लोग स्विमिंग के बड़े एक्सपर्ट हैं ज्यादातर डूबते, ओवर कॉन्फिडेंस, अरे हमारे लिए क्या है, मैं तो, और पानी में एक बार अगर धोखा खा गए माय डियर, तो देर इज नो रिटर्न। जल जीवन है, इसमें कोई शायद संदेह नहीं है। जल न हो तो जीवन, जीवन का एक नाम माने जल का नाम एक जीवन भी है, जीवनम जलम, संस्कृत में जीवनम माने जलम, तो जल जीवन है। लेकिन माय डियर, अगर उसके साथ तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए या थोड़ा नेग्लिजेंट हो गए, तो एक बार सांस उखड़ी तो चाहे कितना बड़ा स्विमर हो, बस जय श्री कृष्ण ही होता है। इसलिए जल का सेवन करते समय बहुत सावधान रहो। अग्नि भी इसी तरह की है, बड़ी सावधानी से बढ़िया ढोकला बनाओ, खांडवी बनाओ, मीठा बनाना है तो आजकल बहुत बढ़िया मौसम है, खीर बनाओ अदौटे दूध की, अगर हजम करने की ताकत हो तो कुछ भी बनाओ, जाड़ा लग रहा है तो सेंक लो। अग्नि बहुत कल्याणकारी वस्तु है, उसका सावधानी से चूल्हे के अंदर अगर तुम लोग प्रयोग कर रहे हो तो सुरक्षित हो। लेकिन कई लोग अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो भगवान न करे आप लोगों को कभी देखने को मिले। अग्नि जिस समय बढ़ती है आप लोग विश्वास नहीं कर सकते हो कि कैसे बढ़, पलक झपक के कहां से कहां पहुंच जाती है और इसकी कितनी विनाशकारी शक्ति है। भगवान न करे आप लोगों को देखने को क्या सुनने को भी न मिले। आजकल टीवी वगैरह के तमाशे से तो सुनने और देखने को मिले, लेकिन भगवान न करे रहो बहुत भयंकर चीज है। इसी तरह राजा, ये जो पावर में है ना, उनसे बड़े संभल के रहो, उनसे दोस्ती भी अच्छी नहीं और दुश्मनी तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। और ये कभी मत सोचो कि ये जो पावर में है वो हमारा है, कभी बस ठीक है, जब तक है तब तक है, तुम बिल्कुल ठीक रहो, कल तक एक साथ भिड़ करके बैठने वाले दूसरे दिन कैसे तलवारें चलाते हैं, ये तो तुम लोग तमाशा देखते ही रहते हो। तो राजा हमारे बस में है, ये हमारे बस, इस धोखे में मत रहना, सावधानी से। इसी तरह योगी का भी, योगी माने ये फकीरों का भी, सावधानी से सेवन करो, उनसे गुण ले लो। ज्यादा नजदीक घुसोगे तो एक तो तुम लोग जो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इसका ध्यान नहीं रखोगे, और अरे वो तो हमारे जो कहो सो मनसे का, तुम चिंता क्या कर रहे हो, वो तो रोंडे वाले हमारे ले कमाल है यार, रोज हमारे घर में खड़े रहते हैं। अब इस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी खतरा हो सकता है। जो अपने मां बाप का नहीं हुआ तुम्हारा कहां से होगा, हो जिन्होंने पाला पोसा है। इसलिए योगी का भी सेवन सावधानी से करना चाहिए। योगी, राजा, अग्नि, जल, इनकी उल्टी रीति, बच के रहियो खासी राम, थोड़ी ना खोते, थोड़ी का मतलब अपनी मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करना। लोग मर्यादा का उल्लंघन कर बैठते हैं और फिर अग्नि तो माने सन्यासी का जो ये वस्त्र है ये अग्नि का प्रतीक है, अग्नि तो है, अग्नि जैसे लाभ भी देती है अगर असावधान किया जाए तो अग्नि हानि भी कर सकती है। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक इन चारों का सेवन करना चाहिए। ले हम तो इनका सेवन करते करते भूल गए, ये हमने योगी राजा अग्नि जल इनकी कहानी कहां से शुरू की थी भाई, क्या प्रसंग चल रहा था जहां से हम इधर मुड़ गए थे, जहां याद करा देना, भूल हम तो बीच में याद कराते रहना कि महाराज जी ने कोई यहां से आप शुरू किए थे, हाँ बताओ कहां से हम लोग चले थे, ये योगी राजा अग्नि जल में कहां से मुड़े थे, व्हाट वॉज द टर्निंग प्वाइंट है। हाँ तो जल से, तो ये जल कहां से आ गया, ये तो योगी राजा अग्निदल चार नाम ये तो जल से शुरू किया था हमने, लेकिन कहां से ये टर्निंग प्वाइंट आया था कि हमको याद कराओ तो अभी तो हम बोल पाएंगे, कहां से बोल पाएंगे, यहां से हम लोग टर्निंग प्वाइंट लिए थे, हमको पता चले कितने ध्यान से सुन रहे हो, हमको सिखाते रहो है। दीपक के तले अंधेरा रहता है, तो इससे फिर अग्नि में कहां से आ गया था, इनका सेवन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। बहुत समीप हो जाने के कारण यहां से शुरू हुआ था, आप लोग प्रवचन सावधानी से सुनोगे तो हमको याद आती रही, चलो हम ही ने याद कर लिया, प्रवचन यहां से प्रण लिया था कि अति सामीप्या अवज्ञा, तुम किसी के इन चारों के बहुत नजदीक रहने से अवज्ञा माने उनकी तरफ से असावधान हो जाते, यहां से प्रसंग आया था भाई डियर समझाए थे। इसलिए अगर सावधान नहीं रहोगे तो प्रवचन कहां से समझ में आएगा भाई डियर, हमने बोल दिया तुमने, हमने अपने मुंह का प्रयोग किया, आपने अपने दोनों कानों का पूरा पूरा प्रयोग किया, आप भी अपनी ड्यूटी से मुक्त और हम तो मुक्त ही हैं, हमको तो कह गए हैं बड़े लोग तो उनकी ड्यूटी निभा रहा हूं। इसलिए हम बीच बीच में इधर पूछते रहेंगे, ध्यान रखना आप कहां हम पूछ लेंगे तो हमको याद कराते रहना, हम भूल गए थे आपने याद करा दिया कि अति सामीप्या अवज्ञा, बहुत नजदीक रहने वाले प्रायः अपने नजदीक वाले का महत्व तो नहीं समझ पाते। भगवान श्री कृष्ण पुत्र हैं, इसलिए वसुदेव जी को भगवान का उपदेश कुरुक्षेत्र का प्रभावशाली नहीं हुआ, बेटा वो मोह है, तो उस बेटे के अति सामीप्यत्व के कारण, अत्यंत समीपता के कारण ये श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, ये इनको विश्वास नहीं हो रहा है। कुरुक्षेत्र में कितने कितने महापुरुष, कितने कितने योगीश्वर, कितने कितने भक्त सब आए थे, भगवान की उन्होंने पूजा स्तुति की थी। युधिष्ठिर के यहां राजसूय यज्ञ में इनकी प्रथम पूजा हुई थी। ये सब जानते हुए भी अतिसामीप्यात, अतिसामीप्य के कारण श्री वसुदेव जी भगवान के उपदेश को पूरी पूरी तरह श्रवण नहीं कर पाए थे। श्रवण का मतलब कि वो सुन लेना नहीं है, सुन तो आप सब लोग रहे हो, बढ़िया भाई की इतनी बढ़िया इसने साउंड सिस्टम लगा रखी है कि सबको सुनाई पड़ रहा है, लेकिन कितना सुनाई पड़ रहा है तुमने अभी अभी देख लिया, दो मिनट पहले आपने देख लिया ये माइक सिस्टम कितना बढ़िया काम कर रहा है। ये तो केवल साउंड सिस्टम या सुनने का नाम श्रवण नहीं है। श्रवण का काम है सावधानतया सुनो, सुनो फिर मन में अवधारित करो। श्रवण के बाद मनन तदनंतर निधिध्यासन, ये सुनते सुनते तुम्हारे कान पक गए हो, जो आता वही कहता, श्रवण मनन निधिध्यासन सुनते ले तुम ही सुनो। लेकिन वास्तव में श्रवण का मतलब है, आप लोग परिणाम देख रहे हो, जगत गुरु श्री कृष्ण जिनकी उपदेश केवल हिंदू नहीं मुसलमान और ईसाई भी बड़े आदर पूर्वक मानते हैं। हमारा तुम सबसे संबंध पड़ता है, गीता का श्लोक बोल कहते हैं हमारी आयत में ये लिखा हुआ है, सीधे सीधे सही लिखा है। अरे भाई सही बात सब कहेंगे, अब चाहे मुसलमान आवे और चाहे ईसाई आवे और चाहे पारसी आए, सब कहेगा गिरीश भाई ने सफेद कुर्ता पहन रखा है। अब कोई व्हाइट कह दे, कोई सफेद कह देगा, कोई उज्ज्वल कह देगा, इतना ही फर्क है, लेकिन जो है वो तो उसी तरह वर्णन करे। तो माय डियर, इतना सब देखते हुए भी भगवान के उपदेश इसलिए काम नहीं दे रहे थे क्योंकि अभी गुरु के प्रति जिस तरह की श्रद्धा होनी चाहिए उस तरह की श्रद्धा श्री वसुदेव जी में श्री कृष्ण के प्रति नहीं है। अब इसको उनका दोष मत मानो कि उनके पुत्र हैं तो इसलिए पुत्रात्मक उनका भाव है तो भी कृष्ण का आदर करते, ऐसी बात नहीं, लेकिन गुरु बुद्धि से नहीं किया। और एक चीज आप सावधान होकर ध्यान रख लें, जब तक गुरु बुद्धि से श्रवण नहीं किया जाएगा तब तक श्रवण का लाभ नहीं होगा। तो गुरु बुद्धि पूर्वक श्रवण करने से ही श्रवण होता है। तो इसलिए वसुदेव जी का अब अंतिम समय आ रहा है, अब यादवों का नाश होने जा रहा है, अब उनके नाश के पहले पहले वसुदेव जी को ब्रह्म का साक्षात्कार, तत्व का साक्षात्कार हो जाए, इसलिए भगवान को चिंता है। भगवान की इस चिंता का परिणाम ये है, हम लोगों ने सुना है भगवान श्री कृष्ण के या परमात्मा के मन का अवतार श्री नारद जी हैं, भगवान के संकल्प के अनुसार नारद जी चेष्टा करते हैं। भगवान के मन में संकल्प आया हमको अपने पिता श्री वसुदेव जी का कल्याण करना है, इस निमित्त से नारद जी को प्रेरित किया या नारद जी ने अपने आप समझ लिया भगवान की इच्छा और वो श्री वसुदेव जी के पास गए। वसुदेव जी ने उनका बहुत स्वागत किया, अपने को कृतार्थ अनुभव किया, कृतार्थ अनुभव करने के बाद उन्होंने प्रार्थना की, भगवान श्रोतुमिच्छामि धर्मान भागवतांस्तवा यान श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्या मुच्यते सर्वतो भयात्। ये मूल है। वसुदेव जी ने कहा, हे भगवान, हे नारद जी, आपसे हम भागवत धर्मों के विषय में जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाहते हो? देखो, हम इस बीच में आपको स्मरण करा दें, हम अध्यापक भी रहे हैं संतों के या संस्कृति विद्यार्थियों के, इसलिए हमारा प्रवचन देने का बहुत स्वभाव नहीं है, अध्यापन का स्वभाव है। मैं चाहता हूं कि ये ग्रंथ कितना होए न होए, इस ग्रंथ के पीछे क्या क्या चीजें हैं वो आपको ध्यान हो जाए तो ग्रंथ अपने आप आपको लग जाएगा। आप क्यों सुनना चाहते हो? क्योंकि इसलिए सुनना चाहते हैं कि अगर श्रद्धा पूर्वक भागवत धर्मों का श्रवण कर लिया जाए, आचरण कर लिया जाए, ये भी नहीं कहा है, यान श्रुत्वा श्रद्धया, बस ये एक उसमें जो टंटा लगा दिया श्रद्धया श्रुत्वा, वो थोड़ा सा गड़बड़ बना, सब लोग सुन रहे हैं, एकदम सबका हो जाना चाहिए, लेकिन एक विशेष लग जाए श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने, श्रद्धा श्रद्धा धारण करने की आदत, तो श्रद्धा पूर्वक सुनने मात्र से मुच्यते सर्वतो भया, सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। अब हम लोग एक विचार कर सकते हैं कि सुनने मात्र से कल्याण कैसे हो जाएगा। भाई, हमने रसगुल्ला सुन लिया, रसगुल्ला रसगुल्ला रसगुल्ला, और सुन लिया कि वो गाय के, देसी गाय के दूध से फाड़ करके छेना बना के इसको ऐसे ऐसे करके घिस करके और फिर यूं करके और चाशनी बना करके और चाशनी यूं डाला जाता है और जब इसके बाद स्पंज बन जाता है फिर उसको ठंडा किया जाता है, फिर इत्यादि इत्यादि सब, और उसको मुंह में डालो। ये हमारे एक पंडित राम अवतार शर्मा थे काशी में, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े, उनको लोग मूविंग डिक्शनरी कहते थे, शायद उनको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पूरी याद थी, ऐसा हमने सुना है। विचित्र कपड़े थे उनका, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बड़ा नाम है, मालवीय जी को डांट लगा दिया, तुमको अंग्रेजी नहीं आती है, ना तुमको अंग्रेजी आती है ना हिंदी आती है, आप वैसे आटा दिया को लिखा मत करो, अशुद्ध लिख दो, मालवीय जी को कह देते थे पंडित। तो खाने पीने के बड़े शौकीन, नीचे पतून पहनते थे ऊपर कुर्ता पहनते, तो सुबह फैशन नहीं चला था, अब तो चल गया, पहले नहीं रहता था, तो उनका नाम इसलिए अब ले रहे कि मिठाई के बड़े शौकीन थे और रसगुल्ला उनको बहुत प्रिय है। बॉम्बे वाले तो कांट अफोर्ड न हलवाई न तुम लोग, लेकिन हमारे बनारस में रसगुल्ला मिट्टी के हड़िया में मिलता है। मिट्टी के हड़िया में रसगुल्ला रहने से वो पिचकता नहीं है, रस में भरा रहता है और सुरक्षित रहता है, तो इसलिए मिट्टी की हड़िया में और रसगुल्ला मिलता है। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि आपको शुगर हो गई, अब आप शुगर मत खाइए, हम छोड़ देंगे, छोड़ दिया। थोड़े दिन बाद डॉक्टर के पास फिर चेक करने गए, पंडित जी आपकी शुगर कम नहीं हुई है, आपने मीठा छोड़ दिया, जिस दिन से आपने कहा दिन मीठा मैंने छोड़ दिया। उनकी पत्नी कहती है एक हड़िया रसगुल्ला खाते हैं तो मैं मीठा कहा खाता हूं, मैं तो एक हड़िया रसगुल्ला खाली खाता हूं। तो उन्होंने कहा पंडित जी मीठा तो आप छोड़ दिया, मैंने सब मीठे छोड़ दिए, खाली एक रसगुल्ला पकड़ रखा है, वो भी केवल एक हड़िया खाता हूं, और वो चलते थे यू ऐसे सीधे तोड़ते नहीं थे, सीधे खट मुंह में, पहले हम भी ऐसे करते थे, अब थोड़ा सा उदार हो गए, हमको भी बहुत प्रिय था, है था क्यों भाई पास थे, लेकिन सावधानता। तो डॉक्टर साहब ने कहा पंडित जी हमारे सामने डॉक्टर बैठा है, तो आप ये शुगर ये रसगुल्ला छोड़ दीजिए, ये जहर है जहर। तो थे इतने बड़े पंडित, इंग्लिश भी बहुत बढ़िया जानते थे और संस्कृत और हिंदी के पढ़े, क्या देखा है डॉक्टर साहब एकदम ठेठ बनारस की गवाड़ू भाषा में, तो के दवाई देखो तद्दा और न देखो न दा, बुझला तुमको दही देना हो बने, तुमको दवाई देना हो तो दो, न देना हो मत दो, समझ गए। देखो एक हड़िया रसगुल्ला तो कुल मैं खाता हूं, अब आप उसको बंद कर दोगे तो वो हम कैसे रहेंगे। अरे पंडित जी जहर है, अरे वो सर्वा जहर बा की अमृत बा के देखा गटैया तक तो अमृत लागा ला, वो करे बात सरवा जाके जहर होला कि अमृत होला के देखा था। अरे जब तक जिए तब तक खा, मर जा तो मर जा, जब तक जिएगे तब तक खाएंगे और मर जाएंगे तो मर जाएंगे। तो डॉक्टर साहब ने कहते ठीक, फिर आपके लिए हमारा कोई शास्त्र नहीं खा रसगुल्ला। ये रामावतार शर्मा कहां से आ गए रसगुल्ला लेकर के बीच में, ये कहां से हम लोग घूमे बताओ, अभी अभी बात है, हैं? अरे सुनने मात्र से हुआ था, सब भूल जाते हैं, सावधान दया सुनू। ये बात हुई थी कि रसगुल्ला सुनने मात्र से थोड़ा मिठाई घूमे चली आएगी कि सुन लिया रसगुल्ला ऐसे बनता ऐसे बनता, देखो दो बार फेल हो चुके हो। रसगुल्ला सुनने मात्र से मुंह मीठा नहीं हो जाएगा, रसगुल्ला जब सेवन करो तो मीठा हो जाएगा। और वसुदेव जी कह रहे हैं नारद जी से, यह शुद्ध ज्ञान श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्या मुच्यते सर्वतो भयात्, सुनने मात्र से कल्याण हो जाएगा, वो कैसे होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हमने कहा कि भाई जैसे पाठ वाली पद्धति से हम लोग सुन लें, संसार की जितनी भी चेष्टाएं हैं जितनी भी क्रियाएं हैं वो सबकी सब ज्ञान के ऊपर आधारित है। ज्ञान माने जानकारी, वी शुड नो। जैसे अगर हमको ये पता न चले कि प्रेमपुरी आश्रम में रमण रेती वाले आए हुए हैं तो हमारे मन में आने की इच्छा ही नहीं होगी। जो ऐसे रोज आते हैं उनकी बात अलग है, जो इसलिए मित्र आ रहे, मेरा मतलब उससे है, हमको पता ही, अरे जब तक हमने ढोकला नहीं खाया था तो इच्छा ही नहीं होती खाने की। शायद तुम्हारे घर से शुरू हुआ था क्या, आपको याद नहीं आ रहा है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, हुआ होगा वही, कई तरह के ढोकले बने दो दिन। और भाई बच्चों भाई ने बताया था इसको हमारा थोड़ा तेल में लगा के खाइए, तो तेल में लगा के खाने की विद्या भी उस दिन आपने सुनी थी, पहली बड़ी बात। तो अब जब तक ढोकला के बारे में हमारे पास ज्ञान नहीं था, हमारी ढोकला खाने की इच्छा होती नहीं। जब एक बार ढोकला के बारे में जान गए और लगा कि ये हमारे लिए अच्छा है, तो हमारे मन में उसकी प्राप्ति की इच्छा होगी, तो हम उसकी प्राप्ति के उपाय करेंगे। और एक हमारे गुरु भाई आए थे दो समय, अब जिस घर में जाएं उस समय हम जरा ठीक थे, तो हर घर में जो बुलाता चले, अब तो हाथ पैर जोड़ते हैं भैया घर मत बुलाओ, हमको पर यहीं आशीर्वाद कृपा करो हमारे को खाए उठे, उस समय चले थे। तो जिस घर में जाए वही ढोकला मिले, वो पंजाबी महात्मा, अरे कलर कहा तुम्हारे ढोकला खाते खाते, उसके बाद वो मुंबई आए नहीं मेरे साथ ढोकला के डर के वजह। जहां जाओ वही ढोकला, सब लोग बड़े बढ़िया पर ढोकला खिलाए कि जो आपको अच्छा लगेगा वही खिलाए, वो बेचारे आए नहीं उसके बाद, दोनों नहीं आए। ये सब पुराने वाले जानते, भजनदास जी थे और परमात्मा जी, आप नहीं जाते तुम्हारे ढोकला खाने के लिए। तो उनको रुचि नहीं हुई जानकारी के बाद, तो उनको छोड़ने लगे। तो क्रिया के पहले पहले जानकारी चाहिए कि ढोकला नाम की कोई चीज है। अगर अच्छी लगी जानकारी के बाद तो हम प्राप्ति की इच्छा करेंगे कि मले, और अगर अच्छी नहीं लगी तो भगे, माने वो दूर होंगे, और नहीं अच्छी लगी तो फिर उदासी रहेंगे। तो जानाति, पहले जानता है फिर इच्छा करता है, इच्छा करता है चाहे प्राप्ति की और चाहे छोड़ने की। इसको कहते हैं इहा, इहा माने प्राप्त करने की इच्छा, जिहासा, जिहासा माने छोड़ने की। तो इहा जिहासा कब होगी, जब हम उसको जानेंगे। अब हमको अगर इहा हुई, जानकारी हुई कि ये अच्छी चीज है, तो चेष्टा करेंगे ये हमको मिले। अब सीधे नहीं कहेंगे तो घुमा के कहेंगे, मयूरा की सास आई, अरे भाई तुम्हारे घर का ढोकला हमको बहुत अच्छा लगा था, कैसे बढ़िया तुम्हारी सास थी उन्होंने खिलाया था, तो प्रशंसा काहे के लिए करें, अच्छा तुम्हारे यहां ढोकला खाओगे क्या, अरे नहीं जाने दो क्यों तकलीफ करो, अरे तकलीफ सोचे ले आओ, ले आ भाई तेरी इच्छा है तो ले आ, नहीं तो कोई बात ही, तो इच्छा है तो कोई नाटक कर रहे हैं। तो प्राप्त करने की इच्छा होने पर ये कैसे मिले, इसकी कोशिश करेंगे। पैसा होगा तो दुकान से खरीद लेंगे, और पैसा नहीं होगा तो हमारे जैसा कोई नाटक करेंगे, कोई फलानी बहन से, कभी धीमा की बहन से, भाइयों से कहना तो फालतू ही, यहां से मिलेगा वही ढोकला, बड़ी बढ़िया चीज गुजराती चीज, तो ढोकला बहुत बढ़िया है, और बढ़िया काले काले उससे छौंक करके और रस वाला ऊपर हरी मिर्च धर करके, और क्या बात है, चम्मच से रसगुल्ला की तरह, वाह 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 वाह। तो प्राप्ति की चेष्टा करेंगे। तो ये हमारी प्रत्येक चेष्टा, हम अगर चलते भी हैं तो पहले जानते हैं, फिर इच्छा करते हैं, और तब चेष्टा करते हैं। तो हमारी प्रत्येक चेष्टा के पीछे ज्ञान आवश्यक है। अगर हम नहीं जानते हैं तो हम चेष्टा नहीं करेंगे। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, मूर्ख से मूर्ख आदमी भी अगर कोई प्रयोजन, प्रयोजन माने कोई हेतु नहीं है, कोई रातिल सो कहिए, कोई मतलब नहीं है, अगर कोई मतलब नहीं है तो कोई चेष्टा नहीं करेगा, प्रयास नहीं करेगा। तो इसलिए जितनी भी चेष्टाएं हैं उनके चेष्टा मात्र के लिए आवश्यक है ज्ञान, जानकारी चाहिए। जानकारी मात्र से कैसे काम चल जाएगा, तो जैसे किसी ने बहुत बढ़िया बासुंदी बनाई है, यह बहुत बढ़िया खीर, चलो अभी आज वही चलने दो, दूध पाक ठीक है, दूध पाक बहुत बढ़िया बना है, रमन रेती का दूध पाक प्रसिद्ध है, दूध पाक और कढ़ी और वहां की ये बालूशाही, ये सब चीजें बस रमन की बढ़िया, लाओ 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 आवाज है, तो बहुत बढ़िया खीर बनी है, अधौटे दूध की, छटाक चावल चना चीनी की, डायबिटीज भी नहीं है, भूख भी लगी है, तैयार है खाने के लिए, बाल्टी भर भर के, हमारे तो डब्बू चलता, कटोरी चम्मच नहीं करते, हम लोग तो सीधे थाली से पीते हैं, हाथ से कितना पियेंगे, दोबारा खीरा, फिर खीर राम पत्ता लगेगा, दिलाओ देव, तो हम तैयार हैं। पर तो हमारे यहां भी लोग कमजोर हो गए, हम लोगों के जमाने में थे महात्मा लोग, तगड़े तगड़े, आधा किलो का डब्बू होता था कम से कम, और पांच पांच छह छह डब्बू पी जाना तो एक साधारण बात थी, इतने साथ हम ही पी जाते होंगे सब, और कटोरी थी सीधे थाली में डालाओ सड़प गए। तो इतना बढ़िया खीर बनी है, लेकिन किसी ने कहा
बहुत बढ़िया खीर बनी। विवेकानंद जी ने अपने आप हमारे गुरु भाई थे विवेकानंद, बहुत बढ़िया खीर बनाते थे। उसमें काला सांप गिर गया था, हमने उसको निकाल बाहर फेंक दिया है, आओ तुमको खीर खिलाए। अब विवेकानंद के हाथ की बनी हुई अधोटे दूध की खीर, खाली इतनी जानकारी मिल गई कि इसमें काला सांप गिरा था। खीर राम खीर राम खीर राम खीर राम, खाओगे? बड़ी टेस्टी है, खुशबू भी आ रही है। केवल जानकारी मिल गई कि इसमें विष है। इस जानकारी के कारण उतनी बढ़िया खीर भूख लगने पर भी छुएंगे तो ज्ञान श्रुत्वा श्रद्धया, हमने श्रद्धा पूर्वक सुना कि इसमें काला सांप गिरा है तो हमने खीर छोड़ दी। तो इसलिए श्रद्धा पूर्वक सुनी हुई सूचना जानकारी हमारे जीवन की चेष्टा में परिवर्तन कर देती है। इसलिए ज्ञान श्रुत्वा, सुनने मात्र से भी मर्त्या सर्वबंधनात् मुच्यते। जब इस तरह से वसुदेव जी का प्रश्न हुआ तब नारद जी, ये हमारे यहां का एक कल्चर है, कभी कोई विद्वान ये नहीं कहेगा ये बात मैं कह रहा हूं, ये पहले के विद्वानों की बात है। वो हरदम कहते हैं मैंने ये बात उनसे सुनी है, कभी अपना नाम नहीं लेंगे, उनसे सुनी। उसका मतलब जैसे हम प्राय कहते हैं हमने स्वामी अखंडानंद जी महाराज से सुना था, हमको ज्यादा अच्छा लगता है उनका, उनकी बात हमको जरा समझ में ज्यादा आती है क्योंकि वो धरती के ज्यादा नजदीक थे। वेरी वेरी प्रैक्टिकल, ऐसा प्रैक्टिकल महात्मा जल्दी मिलेगा, मस्त मलन एकदम लष्टम पष्टम महात्मा, तो अच्छे। तो उनकी बात हम लोग इस तरह चेष्टा करते हैं। तो नारद जी सुनाना है वो बात जो उनको समझ में आई है, लेकिन निमित्त बनाया नारद जी ने कहा भैया वसुदेव जी आपके ने जैसे प्रश्न किया है उस तरह का प्रश्न जब राजा निमी, निमी माने जनकपुर के राजा निमी के यहां नव योगेश्वर पहुंचे थे तो उन्होंने ये प्रश्न किया था, उस प्रश्न के उत्तर में नव योगीश्वरों ने जो सुनाया था वो हम तुमको सुनाते हैं, उससे तुम्हारे प्रश्न का समाधान हो जाएगा। तो ये नव योगेश्वर संवाद की भूमिका है, इसलिए ताजी कर दी कि आप लोग जब हम कल आगे से बढ़ेंगे तो फिर हमको इसको समझने की सुविधा हो जाएगी कि आखिर क्यों नव योगेश्वर संवाद। तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप लोग मनोयोग पूर्वक सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं वो तो आप जानो, लेकिन सुन रहे हैं ये तो हम देख ही रहे हैं, और अगर आप सुन रहे हैं तो हम सुनाएंगे। और बीच बीच में हम इम्तहान लेते तो रहेंगे, दो बार तो आज नंबर मिल गए सबको पूरे पूरे, बताओ। तो सावधानी से, क्योंकि ये विषय ऐसा बढ़िया है, हम बोल रहे हैं इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, बहुत बड़े योगीश्वर बहुत बड़े योगी आप ज्ञानी को ये सुना रहे हैं, माने निमी राजा ज्ञानी हैं उनको सुना रहे हैं, वसुदेव जी को नारद जी सुना रहे हैं, सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, इस परंपरा में बैठ करके आप सुन रहे हैं, इसलिए सावधानतया सुनो क्योंकि ज्ञान श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्या मुच्यते सर्वतो भयात्। इस प्रसंग के ऊपर हम लोग फिर कल आगे चेष्टा करेंगे। श्री रमण बिहारी लाल की जय।